ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को जाएंगे। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर देगा। दोनों नेता परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचार करेंगे। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, G20, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों में द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मीडिया को बताया कि भारत और रूस के बीच 2020 से ही विशिष्ट साझेदारी रही है, जो भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भी प्रभावी है। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच सहयोग को नई गति देगा। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में 3 वर्ष बाद हो रही इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया में होंगे। प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा वहां के चांसलर के निमंत्रण पर हो रही है। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। व्यापार जगत के प्रमुखों के साथ भी श्री मोदी की बातचीत होगी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार आज विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेगी। इसके लिए दिन के 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने भी अपने विधायकों को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। 81 सदस्यों के झारखंड विधानसभा में 5 सीटें खाली हैं। विश्वासमत जीतने के लिए 39 विधायकों का समर्थन जरूरी है। सत्तारूढ़ गठबंधन को 46 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 27, कांग्रेस के 17 और राष्ट्रीय जनता दल तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के 1-1 सदस्य हैं। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में 27 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 24 और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के 3 सदस्य हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं। शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को 44 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद होगा। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। विद्यार्थी उत्तर कुंजी को कल तक चुनौती दे सकते हैं। अब 1 सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित होने की संभावना है। ये परीक्षा पहली बार हाइब्रिड आधार पर आयोजित की गई थी। 15 विषयों के लिए परीक्षा पेन पेपर आधारित थे, जबकि अन्य 48 विषय कंप्यूटर आधारित थे। इस वर्ष 261 केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आम प्रवेश परीक्षा के लिए 13,40,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजीसी संबंधित कई याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जीबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों सहित उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार और उड़ीसा में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय में भी इस महीने की 10 और 11 तारीख को बारिश की संभावना है। अगले 5 दिन के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल और माहे, लक्षद्वीप तथा तटीय कर्नाटक में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।